हम अपनी जिंदगियों को जाया कर रहे हैं माजरत के साथ। कल जाना हमने भी है। देखिए ना, एक बंदा जाता है और आसमान भी रोता है तो जमीन भी रोती है। सिर्फ इस वक्त नबी सल्लम से अपने आप को रिलेट कीजिए। और आप कहते हैं कि नहीं जी, वो तो नबी थे, उनकी तो क्या बात, उनके तो पाँव की खाक के बराबर नहीं। आप बिल्कुल सच कहते हैं। तो चलिए उनसे हट के अबू बकर को ले लेते हैं। एक शख्स था ना अबू बकर, नबी का सहाबी, पहला शख्स जिसकी शान में कोई दूसरा बंदा उस बराबर हो नहीं सकता। क्या आपने फरमाया, मैंने जिस तक दीन पहुंचाया, उसने थोड़ा तो सोचा ना। देखिए ना, नई दावत को कोई एकदम तो कबूल नहीं करता। कुछ तो हेजिटेंट हुआ, कुछ रिलक्टेंट हुआ, कुछ हीलो हुज्जत का शिकार हुआ, लेकिन एक शख्स ऐसा है कि जूं ही मैंने उसको हक पेश किया, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। और वो अबू बकर सिद्दीक थे। और आपने फरमाया, जिसने मेरे ऊपर एहसान किया, मैंने उसका कुछ ना कुछ हक उतार दिया, लेकिन एक शख्स के एहसानों का हक मैं नहीं दे सका, वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु थे। और एक दिन सुबह फजर की नमाज में अल्लाह के नबी पूछते हैं नमाज के बाद, ये बताओ कि तुम में से कौन है जिसने सुबह से कोई सदका किया। सब खामोश हैं, एक हाथ उठता है कि ये नेकी मुझसे ले ली अल्लाह ने। फिर पूछा, ये बताओ तुम में से कौन है जिसने किसी बीमार की इयादत की। फिर वही हाथ खड़ा होता है। जो बात नेकी की पूछी, और सुबह अभी फजर हुई, कोई ये भी नहीं कि सारा दिन गुजर गया। और अबू बकर क्यों है? कहा बस ऐसे ही सुबह उठ रहा था, आ रहा था मस्जिद में, तो एक फकीर नजर आया, उसको सदका दे दिया। ख्याल आया फलां हमसाया बीमार है, आते आते उसकी खबर ले ली, फलां को मेरी जरूरत है, उसके घर को साफ कर दिया। अबू बकर ने जैसी जिंदगी बसर की, आपके मेरे लिए एक मिसाल ले रहा है। अबू बकर का माल था और इस्लाम की बुनियादें थी। देखिए, नबी के पास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन दीन को हमेशा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। आपको होता है कि इस्लाम की बुनियादों में दो हस्तियों का माल लगा हुआ है, और ख़ास तौर पे मक्का के दौर में, एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और एक खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा। एक नबी की जौजा है और दूसरे नबी के सिद्दीक हैं। बाद में तो बड़े लोग देते हैं माल, शुरू में वही देते हैं जिनको यकीन होता है कि मकसद सच्चा। उन्होंने अपने माल का सही मसरफ किया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल किया। आज अबू बकर सिद्दीक को क्या शान हासिल है, जिंदगी भर साथ रहे, हत्ता के हिजरत की राहों में भी अबू बकर साथ, हर जंग में साथ, नबी का दिफा करने में साथ। यहाँ तक कहने वालों ने कह दिया कि जब मेराज के मौके पर अल्लाह के नबी गए तो अल्लाह ने एक फरिश्ते की शक्ल अबू बकर सिद्दीक की शक्ल में ढाल दी। आप समझे कि ये अबू बकर है? कहा नहीं, यहाँ आपके दोस्त की शक्ल का फरिश्ता इसलिए बना दिया कि आपको अबू बकर की कमी महसूस ना हो। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का नबी हो और अबू बकर ना हो? और तोहफा क्या मिला? क़यामत तक के लिए सिद्दीक अकबर नबी के पहलू में दफन है। ये भी तो ज़िंदगी है ना। क्या अबू बकर सिद्दीक ने PhD की थी? क्या अबू बकर सिद्दीक का 5,000 गज पे घर था? क्या अबू बकर सिद्दीक मिलियनेरियंस में थे, टॉप 10s में थे? क्या अबू बकर सिद्दीक के पास दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री थी? क्या अबू बकर सिद्दीक खूबसूरती में आला दर्जे के थे? बहुत कोई बड़ा काम करके दुनिया की किसी किताब में नाम लिखाया? कुछ भी नहीं, सिर्फ एक वजह थी जो मैं आपको और आप मुझे समझा दें। क्या अबू बकर सिद्दीक ने ज़िंदगी का मकसद समझ लिया था? अबू बकर को पता था मेरी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, आज इस ज़िंदगी में जो नेकी कर सकता हूँ कर लूँ। अस्साबिकूना लवलूना मिनल मुहाजरीन वल अंसार, जाके कुरान खोल लीजिए। अबू बकर जैसे आपको 9 लोग और मिलेंगे जिसको कुरान ने भी और इस्लाम ने अशरा मुबशरा कहा। वो 10 लोग जिनको दुनिया में जन्नत की खुशखबरियाँ देंगे, उनमें एक उस्मान गनी थे। 9 दफ़ा अल्लाह के नबी ने तबूक के मौके पे कहा उस्मान फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना। हर दफ़ा जब चंदे की अपील है तो सबसे पहले हजरत उस्मान खड़े होते हैं। 100 ऊंट सामान से लदे फदे सब कुछ इस्लाम के लिए दे रहा हूँ। आपने खुश होके कहा उस्मान फिल जन्ना, ए उस्मान आज के बाद तू कोई नेकी ना भी करे तो तुझे किफ़ायत करेगी। उनका पेट फिर भी नहीं भरता था नेकियों से। उनको दुनिया में कह दिया तुम जन्नती हो, फिर भी आके रोते थे। कभी आप इनके डेथ बेड पे जो इनके कमेंट्स है वो तो पढ़ के देखें। हजरत उमर कहा करते थे, मेरा एक कदम जन्नत में और एक जन्नत से बाहर हो, मैं फिर भी नहीं यकीन से कह सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा। और अल्लाह से गुमान कैसा था? कहते कभी सोचता हूँ मैदान महशर में खड़ा हूँ और अल्लाह एक आवाज़ लगाते हैं, आज मैंने सबको माफ़ कर देना, एक को नहीं करना। तो मुझे गम लग जाता है कि वो उम्र होगा कि अल्लाह ने इसको नहीं जन्नत देनी, और दूसरे ही लम्हे मैं सोचता हूँ कि अल्लाह कहते हैं आज मैंने किसी को भी नहीं जन्नत देनी, बस एक को दूंगा। तो उमर कहते हैं मुझे लगता है ये एक भी मैं ही हूँ। अल ईमान बैन अल खौफ वर रिजा, इन लोगों ने जिंदगियों की कीमत पहचानी, इनको कल हसरतें नहीं होंगी क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस्तेमाल किया अल्लाह के हुक्मों से, एक एक डॉलर, एक एक पैनी, एक एक क्रोन सोच के इस्तेमाल किया, क्योंकि सुम लतुस्सलुन्ना यौम इज़िन अनिन नईम। इन्होंने अपना एक सांस भी जो लिया ना, तो ये सोच के लिया कि इस वक्त अल्लाह की रज़ा का काम कर रहा हूँ कि नाफरमानी का। आज हमारा मसला क्या है, कमो बेश हमें ज़िंदगी का मकसद भी नहीं याद। औरत से पूछे क्या मकसद है, कहती बच्चे पालना। मर्द से पूछिए क्या मकसद है हयात है, वो कहेंगे कमाई करना। ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़र्क रखेंगे कि हाँ हलाल खिलाऊँ, मेहनत करूँ, झूठ ना बोलूँ, रिश्वत ना लूँ, सूद का लेन देन ना करूँ। माँ से पूछिए वो कहेगी हाँ बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ, उनको इस्लामिकली पालूँ। आप किसी बुज़ुर्ग से पूछिए ज़िंदगी का मकसद क्या, वो कहेंगे तहज्जुद पढ़ूँ, चाश्त के भी नफल पढ़ूँ, सुबह शाम दुआएं पढ़ूँ, 5 सिपारे पढ़ूँ। आप अपने घर में से 10-12 साल के ये जैसे बच्चा है, इससे बड़े बच्चों से जाके पूछिए बेटा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद क्या, वो कहेंगे स्कूल जाना, कैरियर बनाना। ज़रा 12, 14, 15 साल से पूछ लीजिए जो बच्चियाँ बच्चे स्कूल से कॉलेज में पहुँच जाते हैं भाई क्या मकसद है, तो वो कहते हैं कि यहाँ से निकल कर कॉलेज में जाएँ और यूनिवर्सिटी में जाएँ और डॉक्टर बन जाएँ। सवाल पैदा होता है इतनी कीमती और इतनी थोड़ी चीज़ हमारे हाथ में हो तो क्या हम उनको इन छोटी छोटी चीज़ों में ज़ाया करते हैं। चलिए ये सब भी ले ली तो क्या कामयाब है। क्या आपने कभी नहीं सुना कि इधर एक बच्चा पढ़ के फारिग हुआ, अल्लाह सबको सलामत रखे, पहले तो दुआ करें अल्लाह किसी माँ बाप को जवान बच्चों का गम ना दे, लेकिन आपने भी सुना होगा जवान बच्चों को कैंसर, जवान बच्चियों को कैंसर। इधर आपका कैरियर पूरा हुआ, आप पढ़ पढ़ के अपने प्रोफेशन की लाइन चूज़ करते हैं, इधर सर में दर्द होता है पता चला ब्रेन ट्यूमर है, इधर हाथ में दर्द, गले में दर्द पता चला कैंसर है, तो फिर आप कामयाब कैसे हुए। देखिए आप सब माशाल्लाह अपने अपने एज पे लेकर सोचिए, अगर आपके जवान बच्चे हैं अल्लाह ताला उनको सेहत आफियत ईमान तकवा देकर दुनिया में आप उनसे अच्छे काम करवाए, लेकिन अगर आपका 15 साल का बच्चा नमाज नहीं पढ़ता 5 वक्त लेकिन फुल ग्रेड लेकर आता है स्कूल में बहुत कामयाब है, आपका क्या ख्याल है आपका वो बच्चा कामयाब है या पे कामयाब माँ है। कामयाबी का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया आज। देखिए सक्सेस क्या है, फमन ज़ुहसिहानि नारि वउद्खिल अलजन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, सूरत आले इमरान में ही आते हैं। और बिल्कुल वो वाक़यात जहाँ ग़ज़वे उहद की कहानियाँ बयान होती हैं उधर है। अल्लाह कहते हैं कि जो जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया वो कामयाब है, और ये दुनिया ये तो एक धोखे का सामान है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जब दुनिया की तरक्की के लिए 1-3 साल का बच्चा मरने आगे जाता है, आज आपको भी पता ना जगह मिले तो माएँ ऐसे परेशान होती हैं जैसे शायद यूनिवर्सिटी से बच्चा महरूम हो गया। कैसे सुबह छोड़ने जाते हैं उन मासूमों को, फिर कैसे लेने जाते हैं, फिर कैसे एक एक चीज़ उनकी प्रोटोकॉल से फॉलो करते हैं। 2-2.5-3 साल के बाद स्कूल में आ गया, आज आपके बच्चे का स्कूल का पहला दिन है, माएँ सारा दिन जाके बैठती हैं ना पहले 2-3 दिन, फिर आप देखिए लेना छोड़ना कोई आसान काम है, फिर आप देखिए बच्चा पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये जो बच्चों का एक स्टडी सर्कल चल पड़ता है ये कोई आसान है, जो माएँ हैं वो खुद जानती हैं कितना मुश्किल है एक एक बच्चे के ऊपर। जिनके माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं उनको तो बेचारियों को होश ही नहीं है, होश तब आएगी जब बच्चे ज़रा 10-12 साल के होके अपने काम खुद करने लगेंगे। अब ये सब कुछ तो करना ही है, लेकिन एक सवाल पैदा होता है। वो कल परसों हम बैठे थे क्लास में, एक सिस्टर ने एक जुमला बोला मुझे अच्छा लगा, वो कहती हैं कि दुनिया मजबूरी है आखिरत ज़रूरी है। मसला कहाँ बिगड़ता है जब हम अपने बच्चों की दुनिया की तरक्कियों की फिक्र करते करते उनके दीन को पीछे डाल देते हैं। 4 साल का होने पे बच्चा स्कूल ना जाए तो 10 सवाल पूछने वाले मौजूद हैं। आपका बच्चा 6 साल का स्कूल नहीं जा रहा, आपको गवर्नमेंट पूछती है ना कि किधर अभी ये बच्चा। आपका बच्चा बेसिक तालीम ना ले, गवर्नमेंट आपको आके पूछेगी। मेरा एक सवाल है, देखिए वही नबी जिसकी कहानी अभी शुरू में सुनाई है, उसकी ज़ुबान अथर से चंद जुमले निकले थे कि तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के होने लगे तो उनको नमाज की तलकीन करो, और 10 साल का होने पे अगर वो नमाज ना पढ़े तो सख्ती करो। ये सबको पता है। और साथ ही उसी हदीस के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि उनके बिस्तर अलग कर दो, यानी फिर दो बेटे हैं, दो भाई हैं, तो वो एक बिस्तर में न सोएं, और भाई बहन का तो सोना बिल्कुल ही मुहाल है। चलिए, आप और मैं मुसलमान, हम माशाल्लाह जद्दी बुश्ती नबी के उम्मती, कोई हाशमी होगा, कोई सैयद होगा, किसी ने अपने नाम के साथ कोई भी नाम रखा होगा, हम सब के डिफरेंट नाम हैं, सर नेम्स हैं। यहाँ बैठे, इस हॉल में बैठे, हम सब अपने आप से पूछें, मेरा 10 साल के बराबर या उससे ऊपर नीचे का बच्चा क्या 5 वक्त की नमाज पढ़ता? शऊर से, वक्त के साथ, फजर पे उठाती हूँ, जोहर पे पढ़ता है, ये नहीं कि सारी इकट्ठी करके पढ़ ली। अगर आपके बच्चा 10 साल की उम्र में 5 नमाजें अपने वक्त पे पढ़ लेता है, मुबारक हो आपको, आप कामयाब हैं, आपका बच्चा कामयाबी की तरफ गामजन है। देखिए, आपका हर बच्चा इम्तिहान का एक पर्चा, सीधी सी बात है। सारे पर्चों में पास होंगे तो अगली जमात में जाएंगे। मेरी बहन ने पूछा कि 4 में से 1 पढ़ ले तो 1 पास है 3 फेल। ये कोई टीम वर्क नहीं है कि एक ने की आपसे ले ली, दूसरी दूसरे से ले ली, तीसरी, और सारे मिल के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं सूरह आल इनाम पढ़ लीजिए, गालिबन 190 कुछ आयत है, कि तुम दुनिया में जैसे अकेले आए थे ऐसे अकेले जाओगे। एक एक बंदे को अल्लाह की अदालत में तनहा पेश करना होगा। आपकी मेरी इमिग्रेशन अलग अलग होती है, आपका मेरा वीज़ा पासपोर्ट इशू जो भी हो, हर बंदे ने खुद ब खुद पेश होना पड़ता है। तो जब दुनिया में हर बंदे को अपनी जंग खुद लड़नी है, एक बच्चा मास्टर करे तो दूसरे को तो नहीं उस पर डिग्री मिल जाती, तो सवाल पैदा होता है कि जब एक माँ होने के नाते आपको अपने बच्चे की, मैं 10 साल की बात कर रही हूँ, 7 की नहीं कर रही, हालांकि हुक्म 7 का है, और याद रखिए 7 साल में एकदम नहीं होगा जैसे उसकी 7वीं बर्थडे होगी तो आप कहेंगे चलो बेटा ये जाए नमाज लोअर पढ़ो, वो 7 साल पहले आपको देख चुका है। वो कहते जब से आंख खोली है ये अब्बा जी, अम्मी, अब्बू जी, ये अंधेरे अंधेरे में उठ जाते हैं, खुसर पुसर हो रही होती है, ये पानी खटका होता है, बाथरूम खोलता है, अच्छा फिर ये मसल्ले पे खड़े होते हैं, ये वो शुरू से देख रहा होता है, 7 साल से वो आपको ऑब्जर्व कर रहा था। माँ को भी करता है बच्चा, बाप को भी करता है। जिस बच्चे ने 7 साल से घर के अफराद को ये करते देखा होता है, और अल्लाह बरकत दे उन घरों में जहाँ बूढ़े रहते हैं, सास है तो ससुर है तो माँ है तो नानी, वो तो बरकतों वाला घर है, वहाँ तो कहना ही नहीं पड़ता, दादी भी उठी हुई है तहज्जुद पे तो नानी भी उठी हुई है तो दादा भी उठे। 7 साल तक बच्चे को पता आई हैव टू, जैसे हर बच्चे को पता है मैंने स्कूल जाना है, रोऊं तो भी जाना है, हंसूं तो भी जाना है, तो वो 7 साल पे बढ़ेगा, वहाँ तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर घरों का रुख नक्शा इससे फ़र्क हो, फिर क्या होगा? क्या हमारे 10 साल के बच्चे 5 नमाजें पढ़ते हैं? मैं उस सवाल को दोहरा रही हूँ, आपने खुद से ये सवाल करना है। अगर आपके घर में सुबह फजर के वक्त ऐसा समा होता है कि जिस वक्त आपको सुबह का जागते हुए माहौल का एहसास हो रहा है, तो आपका घराना कामयाब कराना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने घरों को कब्रिस्तान नहीं बनाओ। क्या मतलब? कि कब्रिस्तान में नमाज और कुरान नहीं पढ़ सकते। मतलब यह कि जिन घरों में नमाज और कुरान नहीं पढ़ा जाता, जो उसका इहतमाम नहीं किया जाता, वो जिंदों का घर नहीं, वो मुर्दों का घर है। तो आप और मैं फिर फजर पे रुकते हैं, फजर के वक्त हमारे घरों का अमूमन नक्शा क्या होता है? आपने फरमाया फजर के बाद सोना नहीं और ईशा के बाद जागना नहीं। चलिए इस क्राइटेरियन पे अपने प्यारे नबी के इस जुमले पे नजर करते हैं, हमारे घरों में रातें कैसी हैं और सुबह कैसी हैं। रात ईशा के बाद आप जागते नहीं थे, बस आप नमाज पढ़ के आराम फरमाते थे, फिर बीच में आधी रात को उठ जाए जितनी देर मर्जी उठे। और आज साइंस ने यह साबित कर दिया कि बिल्कुल जो इब्तदाई रात जिस तरह ईशा के फौरी बाद का वक्त है, तो एक हवा चलती है जिससे हमारे आसाब बोझल होते हैं और नींद आती है। अगर आप उस वक्त सो जाएं तो बड़ी गहरी नींद आएगी और थोड़ी सी नींद से भी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप बिलफर्ज उस वक्त ना सोएं, जो कि आज 90% मुसलमान नहीं सोते, फरमाया उसके बाद नींद उखड़ जाती है, फिर आप जब सोते हैं तो वो आसूदगी नहीं होती। मुझे बताइए, जब हम सिर्फ इसे एक छोटे से कानून पे अमल नहीं कर पा रहे, हमें क्या हक है बड़ी बड़ी बातें करने का कि हम इस्लाम के लिए ये कर दें, तन मन धन की बाजी लगा दें, उधर इस्लाम की काम हो तो उस मुल्क में इस्लाम आए, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क बन जाए। ये तो बड़ी बात है, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात है। ये तो छोटा सा घर अल्लाह ने मुझे दिया, चार छः लोगों की हुकूमत दी। हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन आन रईयत ही, तुम में से हर एक राई, राई कहते चरवाहा, शेफर्ड जो बकरियों को चराता है, तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा, यानी बकरियों के बारे में चरवाहे से पूछा जाएगा ना। तो शौहर और बीवी कुल्लुकुम में सब आते हैं, शौहर भी बीवी भी। मर्दों की तो ऑफकोर्स जिम्मेदारी है ही, औरतें भी इसी में आती हैं। औरत से बच्चों की तरबियत के बारे में पूछा जाएगा, मर्द से रिज़्क के हलाल के बारे में पूछा जाएगा। आप मुझे बताइए कि अगर आपसे मुझसे हमारे चार बच्चों का, या तीन या दो या एक, जितने भी हैं उनका हिसाब ले लिया गया, तो कितने परसेंट मुसलमान कामयाब हैं उसमें? इतनी फिक्रें लगा ली अपने बच्चों की, दुनिया की। मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, यकीन करें कि पढ़ने के बाद मैं खुद सोच रही थी कि जिसने लिखा है बहुत कीन ऑब्जर्वेशन है, या तो उनके घर में ही कोई बच्चा होगा। मैं मिलता है तो सुनाती हूँ आपको भी, कि अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए आज माएँ कितना खपती हैं, कितनी फिक्र करती हैं। खपना किसी और रंग में, फिक्र तो हमेशा ही थी माँ को और होनी भी चाहिए, लेकिन आज थोड़ी सी सोच फर्क हो गई है। बस दफ़ा एक छोटी सी वो बात सिखा देती है हमें, जो कि बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखाई जाती। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बात उनकी सच है कि जब इम्तिहान के दिन आते हैं तो माओ का क्या हाल है। शायद इधर बाहर रहने वाले लोग इतना ना समझे, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है बच्चों का भी इतना नहीं पढ़ाते, ऐसे ही है ना, स्कूलों में पढ़ के आते हैं। चले मेरी मदद करें, कितनी बच्चों वाली माँ इधर बैठी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाती हैं घर आके भी, या उन पर नज़र रखती हैं कि पढ़ो,
जो छोटे थे तो पढ़ाया था
छोटे बच्चों को।
अभी
जी छोटों की
छोटे
बात ही
हैं।
हो रही है ना। चलिए
हाँ, इवन घर में टीवी नहीं लगता अगर बच्चे पढ़ रहे हैं
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने फरमाई कि घर में टीवी नहीं चलता ये सब बच्चों के पढ़ते। ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ, बड़ी दिलचस्प सी पोएम है। कहती है कि इम्तिहानात का मौसम है, माएँ परेशान हैं क्योंकि कल बच्चों का इम्तिहान है, पार्टियाँ डिले हो रही हैं, मेहमानों के ना आने की दुआएं हो रही हैं क्योंकि कल बच्चों का एग्जाम है, ट्यूशन वाली बाजी पे भी अब तो भरोसा नहीं रहा, ठीक से सुना भी है या नहीं, लिखाया भी है या नहीं, मैं ज़रा खुद से सुन लूँ एक बार, न खाने का होश है न रेस्ट का फिक्र, बच्चों से ज़्यादा इन माओं का खुद का इम्तिहान है कि कहीं रिजल्ट ख़राब ना हो, मेरे बच्चे का कैरियर ख़राब ना हो, बैरूने मुल्क भेजा जा रहा है आला तालीम के लिए, इसका मुस्तकबिल संवारने के लिए, स्कॉलरशिप के लिए दुआएं हो रही हैं, रब से इसके वीज़ा लगने की इल्तिजाएं हो रही हैं, लेकिन ये रुक कर किसी ने सोचा ही नहीं। अब इतनी बात जो कही है इसमें तो नहीं कोई किसी को एतराज़ है ना। और यकीन करें पाकिस्तान में माओ को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ स्कूलों में इतनी फिक्र नहीं होती जितनी फिर माओ को मेहनत करनी पड़ती है। बहरहाल ये तो सब है, अब जो सोच है उसको समझिए। ये रुक कर किसी ने सोचा ही ना कि ट्यूशन में बच्चे ने पढ़ी है नमाज, ये इतनी जिम्मेदारी से स्कूल के लिए तो उठाया, क्या हमने इन्हें फजर के लिए भी जगाया, सबक तो खूब हमने अच्छी तरह रटवाया, क्या कुरान की तजवीद को भी पुख्ता कराया, ये अग्यार यानी गैरों की, ये अग्यार की गोद में फेंक आए हैं हम, लेकिन इसके दीन ईमान का भी है हमें कोई गम, ये मुसल्ले पर बैठकर बच्चे की आखरत के लिए कोई दुआएं की हमने, नस्लों के संवारने की, इनके पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने की इल्तिजाएं की हमने, अगर नहीं तो कुरान कहता है कि जो कहते हैं हमें दुनिया में हसना दे तो इनके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं, है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और जो दुनिया के साथ आखरत मांगते हैं इनके लिए यहाँ भी हसना वहाँ भी हसना। तो आइए मिलकर आज हम औलाद की आखरत के बारे में फिक्र करें, कोई लाहे अमल बनाएं कि इनके दिलों में महज गमे दुनिया ना हो बल्कि आखरत की फिक्र भी हो, और एक दूसरे को इस फिक्र पर उभारिए कि वक्त बहुत थोड़ा है और काम बहुत ज्यादा है। क्या समझ आई आपको इस पॉइंट से, बात सच है कि झूठ है? ये बहुत बिटर ट्रुथ है। हम ये सोचें कि हम अपने बच्चों की आखरत के लिए क्या कर रहे हैं। अल्लाह इनको दुनिया की भी दौलत दे, इनको आखरत की भी दे, इनको ईमान की भी दे, इनको तकवा की दौलत भी दे। बच्चों की दुनिया के लिए फ़िक्र करना बुरी बात नहीं है। शायद मैंने जो आपको भी पोइम पढ़ के सुनाई, उससे कुछ लोगों के जहन में ये सवाल उभर सकता है कि क्या फिर अपने बच्चों के इम्तिहानों की फ़िक्र ना करें, क्या फिर इनको ना पढ़ाएं? तो ये जवाब इसका नहीं है, पढ़ाएं। अगर आपके बच्चे दुनियावी तालीम नहीं लेंगे तो मुझे बताइए कि जो दुनिया नहीं पढ़ता, मेरा तो ईमान है, वो दीन भी नहीं सीखता। ये मैं अपने मुशाहदे से कह सकती हूँ। सबसे ज़्यादा दीन को अच्छी तरह लेने वाले लोग दुनियावी तौर पर पढ़े लिखे हैं, और मेरा क्रीम ऑडियंस होते ही पढ़े हुए लोग होते हैं, क्योंकि मुझे पता है वो आधे जुमले से बात समझ जाते हैं। जिसको दुनिया की तालीम की कदर है ना, उसको दीन की तालीम की भी कदर है, और जिनको दुनिया की नहीं, उनको दीन की भी नहीं है। इस वक्त ये तकाबुल नहीं है, ईदर और नहीं है कि या ये करो या वो। असल जो गलती लगती है वो क्या है कि हम दुनिया की फ़िक्र में इतना घुलते हैं कि आखरत की फ़िक्र पीछे पड़ जाती है। जिस तरह अल्लाह की ज़ात सबसे ऊपर है ना, कि अल्लाह की ज़ात से ऊपर है, बाकी सब नीचे है, इसी तरह याद रखिए कि उसकी बात भी हमारे लिए अहम है। अगर आप 10 साल की उम्र तक अपने बच्चे को 5 वक्त नमाजी बना दें, और अल्लाह आपको बेटे दिए हैं और अल्लाह उनको ज़िंदगियाँ दें, अगर मस्जिदों का रास्ता दिखा दें, फजर में बाप की उंगली पकड़ कर और दादे और नाने के साथ अगर वो मस्जिद जाते हैं ना, ये बाहर कितनी बुराई, कितनी गंदगी है, इंशाल्लाह उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये मैं आपको पूरे यकीन से कह सकती हूँ, कुरान में रेफरेंस मौजूद है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो एक मुसलमान बाप के घर में पैदा हुए, इस्लामी माहौल में थे, हालात के उतार चढ़ाव की वजह से एक कुफर वाले माहौल में पहुँच गए, आज के दौर में कह लीजिए गैर मुस्लिम मुल्क में पहुँच गए, नहीं बिगड़े। ना माँ सर पे, ना बाप सर पे, ना भाई ना बहन, परदेश और वो मुआशरा जहाँ औरतें गुनाह की दावत दे रही हैं। वजह क्या है कि 8-10 साल की उम्र तक बाप उनकी अंदर की पूरी तरबियत कर चुका था। आपके हमारे बच्चों ने तो इन सोसाइटीज़ में इंशाल्लाह ताला खैर के पौधे लगाने हैं। देखिए, आप और मैं नॉर्वे में इस वक्त मैं याद दहानी के लिए भी बोलती हूँ, और मैं मुख्तलिफ जगहों में जब जाती हूँ तो मैं जहाँ होती हूँ वहाँ का नाम लेती हूँ। आपने शायद नॉर्वे ही में मुस्लिम्स को देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, या पाकिस्तान में देखा होगा। मुझे आपसे थोड़ा सा ज़्यादा अल्लाह ने मौका दिया, मैं पूरे यूरोप के, अमेरिका, कनाडा, चारों तरफ देखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, खेतियों की खेतियाँ तैयार हैं मुसलमानों की नस्लों की। आज आप ये नहीं कह सकते कि दुनिया के फलां मुल्क में कोई मुसलमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम इन मुआशरों में जाते हैं तभी तो हमारा उनसे इंटरेक्शन होगा, घुलेंगे, मिलेंगे, बातचीत होगी, बीच में ताल्लुकात बनते हैं। आप इस चीज़ को इस तरह समझ लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाते हैं तो मक्का और मदीना दो जगहों में इस्लाम आ गया। मदीना से थोड़ा दूर हजाज यानी तबूक की सरहदों तक इस्लाम आ गया। आज 100+ मुल्क हैं मुसलमान, इस्लामिक मुल्क 100 से ज़्यादा हैं। ये कहाँ से आए? होता क्या था, एक नेचुरल प्रोसेस समझ लीजिए, और मेरा मैं इसी पे अपनी बात पूरी करूँगी। वो क्या है कि जब अल्लाह के नबी का आखिरी हज था, खुतबा हज्जतुल विदा आप सब ने अपनी इस्लामियात की किताबों में भी पढ़ा होगा, कॉलेज में भी था, यूनिवर्सिटीज लेवल तक जाता है, आपने वहाँ एक बात पूछी थी, ए लोगों ये बताओ कि अल्लाह ने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी क्या मैंने पूरी कर दी? तो साहबा ने ऊँची आवाज़ से कहा कि बल्लगता वा अदैता, आपने पहुँचा भी दिया और हक भी अदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपकी आंखों में आंसू थे क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी काम के लिए बुलाए जाएं और आप वो काम ही ना करें तो आप जवाब दे हैं। आपने अल्लाह ताला को गवाह बनाया कि अल्लाहुम्मा अशहद के अल्लाह तो गवाह रहना कि जो नबूवत का काम जो मेरे ज़िम्मे था पैगाम देने का वो मैंने दे दिया। उसके बाद एक सिर्फ एक अल्लाह के नबी का ऑर्डर था, तुम जितने लोग यहाँ मौजूद हो जिन्होंने मेरे से सुन लिया, अब इस पैगाम को लेकर उन लोगों तक पहुँच जाओ जिन तक ये पैगाम नहीं पहुँचा, जो मेरे पास नहीं आए। बस ये जुमले थे। तकरीबन 3-3.5 महीने उसके बाद अल्लाह के नबी ज़िंदा रहे, और अभी अव्वल में आप अपने मालिक हकीकी को जा मिले। अब सरा सा इमेजिनेशन में लाइए कि मदीना की गलियाँ अल्लाह के नबी की जुदाई में रो रही हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि मदीना शहर में सबसे खुशी का दिन वो था जिस दिन आप मदीना तशरीफ़ लाए, मक्का से अल्लाह ने आपको मदीना में भेज दिया। लेकिन मदीना में सबसे उदासियों भरा दिन वो था कि जब आप रहलत कर गए। अब क्या होता, सहाबा क्या करते, आपके रोज़े के पास बैठते और वहाँ आपकी चालियों को चूमते, नाते पढ़ते और दुरूद पढ़ते और क्या कहते कि नबी की मोहब्बत में मदीने से नहीं निकलेंगे। दिल तो यही करता है, आज हम जैसे गुनाहगार लोग भी जाते हैं वापस आने को दिल ही नहीं करता, ऐसे ही है ना। लेकिन सहाबा ने अल्लाह के नबी की ज़ाती और शख्सी मोहब्बत से बढ़कर आपकी बात को समझा, और वो बात क्या थी, दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाओ। आपके दुनिया से जाने के कुछ ही अरसे के बाद मदीना खाली होने लगा, सहाबा कराम बाहर निकले। ये जो 100 से ज़ायद मुसलमान मुल्क है ना, ये कैसे बने? सिर्फ हज़रत उमर के 10 साल दौर में तो ये बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी, वो भी कॉन्कर हुई, कैसरो किसरा की और ये ईरान फारस ये वो, असल में सहाबा के इंटरेक्शन से हुआ। ये बात आपके और मेरे लिए अहम है। सहाबा एक मुल्क में जाते हैं, एक शहर में जाते हैं, फिर वहाँ लोगों के साथ रहते सहते, आदतें इतनी खूबसूरत, मामलात इतने फेयर, कॉल ऑफ फेल में तजाद कोई नहीं, खिदमत करने वाले बेजरर लोग, लोग उनकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं। हत्ता कि आपको बताया कि बरे सगीर पाको हिंद, हम सभी का ताल्लुक उधर से ही है ना। अपने नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम का, सबको पता है सिंध का फातह, 18 साल का नौजवान लड़का था, ताइफ से निकला और सिंध तक पहुंचा। इस शख्स को किसने इलेक्ट किया था? हिंदुओं ने वोट दिए थे, क्योंकि वो राजा दाखिर के जुल्म सितम से सताए हुए थे और इस शख्स को देखकर कहते थे कि इतनी खूबियों वाला शख्स इंसान नहीं हो सकता, ये भगवान है। आप पढ़ के देखिए, कई हिंदुओं ने अपने मंदिरों में मोहम्मद बिन कासिम का एक बुत लगाया होता था, कहते थे ये भगवान है क्योंकि इसमें खूबियाँ बड़ी हैं। अब वो उनकी सोच थी ना, लेकिन मुसलमान में खूबी थी। आप और मैं वापस आते हैं पाकिस्तान से, अल्लाह हमें नॉर्वे ले आया, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कीजिए। अल्लाह ज़मीन के जिस टुकड़े पर आपको भेजे, आप एक बीज बनिए, आप वहाँ इस्लाम का एक रिप्रेजेंटेटिव बनिए, आप और मैं एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बने। आप नॉर्वे वालों को इस्लाम का कुछ नहीं पता था, ये अपने बेजरर लोग अपने हाल में जी रहे थे, एक फैमिली से दूसरी से तीसरी से चौथी आई, तसव्वुर में ले आइए। अब उन्होंने देखा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलते, ये सच बोलते हैं, ये मेहनती बहुत हैं, ये फ्रॉड तो करते ही नहीं है, और मज़े की बात ये कि इनके घरों में कोई झगड़ा ही नहीं होता, और देखिए पूरा साल गुजर गया एक डाइवोर्स नहीं हुई मुस्लिम घरों में, क्राइसिस सेंटर में एक मुस्लिम लेडी नहीं आई, बरनेवान ने किसी एक मुसलमान बच्चे को नहीं पकड़ा। आप मैं ज़रा एक आइडियलाइज सोसाइटी तो सोचिए, अगर ये रिकॉर्ड एक साल नॉर्वे की हुकूमत के सामने चले जाए कि ये कोई इंसानों का एक गिरोह इधर आया है, पर इनके अंदर अमन ही अमन है, चैन ही चैन है, ये अच्छे ही अच्छे हैं, क्या वो आपको मुझे देकर इस्लाम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे? उनके तो घर टूटे हुए, उनके पास तो इतने मसले, कोई एक ड्रग एडिक्टेड नहीं है, कोई इन्होंने झूठ नहीं बोला। ये था इस्लाम फैलने का तरीका। वो कहते हैं खुशबू को बताना नहीं पड़ता कि हाँ ये खुशबू है, वो खुद फैल जाती है। अगर हम अपने किरदार को इस्लाम के मुताबिक लेकर वल्लाही बिगड़े से बिगड़े किसी मुल्क में चले जाएं, वहाँ इस्लाम आएगा, और ये आज मेरी आपकी जिम्मेदारी है। हमने इन मुल्कों में वो नस्लें छोड़ के जानी है जो इन मुल्कों को इस्लाम दिखाएं, ना के अपोजिट जो कि आज हालात बने हुए। जब हम अपना काम नहीं करते ना, तो फिर नुकसान हमें ही होता, फिर गंदगी फैल गई, होमोसेक्सुअलिटी फैल गई। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे 20 साल पीछे लड़की लड़के का ताल्लुक बड़ा बुरा था, यारी दोस्ती, बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप बड़ी बुरी थी। हमारे मुल्कों में तो कोई तसव्वुर नहीं करता, गैरत के नाम पे भाई बाप भी कत्ल कर देते थे ऐसे लड़कों को। आज क्या हुआ, जो ना खूब था वो खूब हो गया, कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अब माँ कहती है, ये मेरे सामने एक माँ ने बात की है, मैं किसी तीसरे की बात नहीं कर रही। आज तो ये शुक्र करते हैं कि बेटा शादी के लिए कह रहा है ना, तो लड़की से कह रहा है, लड़के से नहीं कह रहा। और एक ने इससे भी अदा दिखाई कि मैंने बेटी को कहा, बेटा तू लड़की ढूंढ ले, तो खुद ढूंढ ले, मैं चली जाऊंगी शादी करने तेरी, बट शर्त है कि मुसलमान हो। यानी आज की माँ इस पर बड़ी खुश है कि बेटे ने गर्लफ्रेंड मुसलमान लड़की बनाई है। आप बोलिए ये क्या हो रहा है, हमें हम किस रंग में रंगे गए? ये वजह आज इस्लाम पे हर उंगली उठती है। वो अल्लामा इकबाल इतने 200 साल पहले रो रो के चले गए कि रहमतें हैं तेरी अग्यार के काशाने पे, बर्क गिरती है बेचारे मुसलमानों पे। आज आप अपने 10-15 साल के बाशोर बच्चे को बिठाकर पूछे, बेटा व्हाट इज मुस्लिम, लेक्चर में सुन रही थी, एक इंग्लिश स्पीकर थे तो वो किसी रिवॉर्ड की कहानी सुना रहे थे। यकीन करें सुनने के काबिल है कि इस्लाम कबूल करने से पहले जब तुम लफ्ज मुस्लिम या मुसलमान सुनते थे तो तुम्हारे जहन में क्या आता था। यकीन करें सर शर्म से झुकते झुकते रुकू से सजदे में चला जाए बंदा, ये कैफियत हो। एक एक बात सच्ची, जज्बाती और हेटर्ड और धोखेबाज और डिसऑर्गनाइज और सड़कें टूटी हुई, और ये होता है इस्लाम और मुसलमान। आज आपका बच्चा क्यों फ़ख्र करे मुसलमान होने पे, सवाल है मेरा। आपका 20 साल का बच्चा वो कहते हैं माँ को, कहते देखे ये कितने ऑर्गेनाइज लोग हैं, सड़कें इनकी अच्छी, ये लाइनें बनाते हैं, ये रूल्स में खड़े होते हैं, ये रूल्स को फॉलो करते हैं। आप बताएं मुसलमानों के पास क्या? तो इसकी वजह इस्लाम नहीं है, आज का मुसलमान है। तो आज की सारी महफिल में जो सोच दी वो यही थी कि आपको मुझे वापस उसी सोर्स पे आना पड़ेगा, वो माएँ बनना पड़ेगा जिन्होंने अपने बच्चों की वो तरबियत की, वो किरदार साजी की कि जिसके बाद 18 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम फातह सिंध और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह 18 साल की उम्र में तालीम पूरी करके किताबें लिख चुके। चलिए आप भी जाइए ज़रा अपने सोच में, 18 साल का आज का नौजवान क्या कर चुका। हो सकता है कॉलेज में आ गया हो और कॉलेज के बाद अगले दौर में आ गया, ओवरऑल उन्होंने ज़िंदगी से क्या लिया। और हदीस में आता है क़यामत के करीब जवान मौतें कसरत से होंगी, अल्लाह ना करे कि हम किसी का सदमा से हैं। दुनिया की भी फिक्र करें आखरत की भी। अब इसका एक क्लोज सर्कट पैकेज क्या है, जो चीज़ मैंने अपने लिए पसंद की वही आपके साथ शेयर की। ये कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती, ये कोई दुआएं भी नहीं है कि आप सारे मसल्ले डालकर दुआएं भी करेंगे, नहीं, ये एक पूरी मेथडोलॉजी है। आज की माँ के हाथ में कुरान दे दें, सीधी सी बात है, माँ कुरान पढ़ेगी ना बच्ची भी पढ़ेगी, जो माँ करती है वो बच्ची करती है। आज मैंने बच्ची का मसला तो छेड़ा ही नहीं, 10 साल के अगर बेटे की नमाज है बेटी की नमाज है तो 12 साल की बच्ची को भी तो बाहया दिखना चाहिए। क्या आज गैर बाहर राह चलते एक मुसलमान लड़के और लड़की और एक गैर मुस्लिम लड़के और लड़की में कोई फ़र्क है? फ़र्क नहीं है तो सोच की फिक्र है। फिक्र मुसलमान एक आज़ाद कौम, एक आज़ाद सोच है, वो अल्लाह का बन के वो पूरी दुनिया में पूरे यकीन और एतमाद के साथ जाता है। तो आप अपना सफ़र कुरान से शुरू कर दें। यकीन करें ये गोदों के बच्चे आपसे कुरान के सपारे लेकर पहले फाड़ेंगे फिर पढ़ेंगे, आप कापी पेन पे नोट करेंगी तो ये भी लिखेंगे, और जो माँ करती है वही बच्चा करता है। आपको पता है बेटियाँ तो माँ को ही फॉलो करती हैं, बेटे अक्सर बाप को करते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी तालीम का सिलसिला शुरू करेंगे, ये ओनली वे है। अल्लाह के नबी ने जो बिग चेंज पैदा किया था ना मक्का मदीना में, उसकी मेथडोलॉजी 4 दफ़ा कुरान में अलकम वेश अल्फाज के साथ कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम, और अल्लाह के नबी वो थे जो लोगों को तालीम देते थे हिकमत सिखाई। देखिए ना, कोई भी किताब पढ़े बगैर तो नहीं आलिम बनता है। आप तो किताब पढ़े बगैर गाड़ी भी नहीं चला सकेंगे, मैं भी नहीं चला सकती। तो कुरान को पढ़ना है, समझना है। हमने बंद किताब बहुत पढ़ी या इसकी इज्जत बड़ी की, इसको ऊपर रख दें, गोल्डन कागज़ में लपेट दें, ऊपर गोटा किनारी लगा दें, घर में सबसे ऊपर वाले रैक में रखें, खाद से गिर जाए तो आटा दें, पीछा नहीं करना, बेटी की शादी पे सर पे इसका साया कर दें, ये तो कर लिया। अब क्या करना है, इसको खोलना, इसको किताब हिदायत बनाना है। ये मैनुअल ऑफ लाइफ है। देखिए ना, खाने की तरकीब मिली रेसिपी तो उसको फॉलो करेंगे तो पकेगा ना। क्या आप उसका नक्शा बना के किचन में फ्रिज पे लगा देंगे तो आपका खाना पक जाएगा? बाहर आते हैं आप, यहाँ आए मैं आए, ये भी हमारी सिस्टर भी कर रही थी ना, नेविगेटर से घर ढूंढ रहे थे, जो नक्शा होता है उसको फॉलो करते हैं हम उस घर में पहुँच जाते हैं। क्या आप उस नक्शे को वहाँ रखें गाड़ी में रखें, इसकी बरकत से हम इस घर में पहुँच जाएंगे? तो हमने कुरान को बरकत की किताब ज़्यादा समझा है और इसको इंशाल्लाह समझेंगे।